ओम शांति।
ओम शांति।
प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर स्वयं निराकार परमात्मा ने जो अमूल्य विश्व कल्याणी महावाक्य उच्चारे, उसी के आधार पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रस्तुत कर रहा है विश्व का अंतिम सत्य तथा भारत की प्राचीन दैवी संस्कृति का साक्षात्कार कराने वाला एक आध्यात्मिक महानाट्य सत्य महाभारत।
महाभारत की वास्तविकता प्रस्तुत कर मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति का अमूल्य ज्ञान प्रदान करने वाला एक अप्रतिम नाट्य सत्य महाभारत।
अंधश्रद्धा का पूर्णतः निर्मूलन कर यथार्थ श्रद्धा का ज्ञान एवं मानवीय जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य देने वाला विश्व का सबसे कल्याणकारी महानाट्य
सत्य महाभारत।
सत्य महाभारत। इस महानाट्य में भाग लेने वाले कलाकार इस प्रकार है। विशेष निवेदन श्रीमती गौरी लागू।
प्रास्तविक एवं अंतिम कथन भ्राता राहुल सोलापुरकर।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की भूमिका भ्राता निमिष तोटे।
महावीर अर्जुन की भूमिका भ्राता सुहास कुलकर्णी। संगीत दिग्दर्शन तथा गायन श्रीमती चारुशिला बेलसरे। विशेष सहभाग भ्राता धनंजय साठे एवं भ्राता प्रमोद चिल्लार। आध्यात्मिक मार्गदर्शन राजयोगिनी सुंदरी बहन जी एवं पद्मा बहन जी ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र मीरा सोसाइटी पुणे।
निमित्त लेखक निर्माता एवं निर्देशन ब्रह्मा कुमार जगदीश दीक्षित।
ध्वनि मुद्रण भ्राता मुकुंद फड़कले स्टूडियो एलकॉम पुणे महाराष्ट्र। ओम शांति। आज आपको इस नाटक का दूसरा भाग सुनना है। पतित पावन कौन है, गीता का भगवान कौन है, अर्थात पतित पावन वही है जो स्वयं सदा पावन है। पतित पावन वही है जो मनुष्य आत्माओं को पावन करने अर्थ परम धाम से आकर भगवद गीता एवं राजयोग की शिक्षा देता है।
परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं, शिव योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेश लाए परम पिता शिव परम धाम
आओ अनुज, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूं।
हे ज्येष्ठ भ्राता, आपको मेरा विनम्र प्रणाम। हे वासुदेव, कल जो मुझे परमात्मा का परिचय प्राप्त हुआ उस पर मैंने मनन चिंतन भी किया है। अब मेरे मन में परमात्मा के प्रति कोई संदेह नहीं रहा। और कल मैंने आपको ये भी कहा है कि परमात्मा का ये अनमोल परिचय सभी को देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ परिचय ना होने के कारण ही परमात्मा के प्रति आज के मानव का मन भटक रहा है। अनेक मंदिरों में अनेक प्रकार की मूर्तियां देखकर वो भ्रमित होता है, जैसे कि त्रिमुखी श्री दत्तात्रेय, धनुर्धारी श्री राम, चतुर्भुज श्री विष्णु, गजमुखी श्री गणेश एवं अष्टभुजा देवियां, इस प्रकार और भी कई मूर्तियां हैं। उन्हें देखकर मानव यही विचार करता है कि इनमें से भगवान है कौन, अथवा वो सभी को भगवान मानकर कहता है कि ये तो समस्त भगवान के ही भिन्न भिन्न रूप अथवा अवतार हैं। हे वासुदेव, इस समाज को हम कैसे समझाएं कि इनमें से ना कोई भगवान है और ना ही कोई भगवान का अवतार है।
पार्थ, समाज को ये यथार्थ ज्ञान दो कि जिन्हें आप भगवान समझ रहे हैं वो सभी देहधारी देवी देवता हैं। तत्पश्चात ये भी स्पष्ट करो कि प्रत्येक देवता भगवान नहीं, परंतु भगवान की श्रेष्ठ रचना अवश्य है। इसी भारत में 5000 वर्ष पूर्व सतयुग त्रेता युग में इन्हीं देवी देवताओं का राज था, जिनका गायन 33 कोटि का है, परंतु भगवान का गायन इससे पूर्णतः भिन्न है। अनुज, वो गायन यही है कि भगवान एक ही है और वो है केवल निराकार शिव। पार्थ, मनुष्य आत्माओं को शिव भगवान का यथार्थ परिचय देकर ये अवश्य कथन करो कि यदि सभी का स्वामी एक ही ईश्वर है तो सभी मनुष्य आत्माओं ने एक ही निराकार भगवान से योग युक्त होना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, योग का अंतिम उद्देश्य है विदेही आत्मा का विदेही परमात्मा से मंगल मिलन होना। ये मिलन साध्य करने के लिए साधक योग में स्वयं की विदेही अवस्था प्राप्त करता है। ये विदेही अवस्था ही देह एवं देह के संबंधियों की विस्मृति कराता है। परंतु यदि योग साधना में किसी देहधारी की स्मृति आती है तो साधक विदेही अवस्था से वंचित होता है, फलस्वरूप वो परमात्मा मिलन का अनुभव ही नहीं कर सकता। इस प्रकार देहधारी देवी देवताओं की स्मृति भी योग में विघ्न रूप बन सकती है। पार्थ, इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य देवताओं के प्रति मुझे आदर नहीं है। जिस प्रकार ऐतिहासिक पुरुष एवं संत महात्माओं को आदर्श माना गया है, उसी प्रकार सभी देवी देवता मानव मात्र के लिए आदर्श है। परंतु हे पार्थ, यह आदर्श तब रह सकता है जब उनके प्रति मनुष्य को यथार्थ ज्ञान हो। इस भारतवर्ष में जितने भी भिन्न भिन्न मंदिर है उतनी ही विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं। प्रत्येक मूर्त में कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। पार्थ, तुम्हें इस रहस्य को अवश्य जानना है, परंतु तुम्हें एक ही परमात्मा से योगयुक्त होना है। बोलो पार्थ, तुम प्रथमतः किस मूर्त का आध्यात्मिक रहस्य जानना चाहते हो?
हे मधुसूदन, मैं प्रथमतः श्री दत्तात्रेय की मूर्त का रहस्य जानना चाहता हूं। अब मेरा प्रश्न आपके लिए यही है कि इस प्रकार त्रिमुखी श्री दत्तात्रेय वास्तव में होकर गया है अथवा नहीं?
नहीं धनंजय, इस प्रकार ना कोई त्रिमुखी मनुष्य होता है ना कोई देवता। श्री दत्तात्रेय तो ब्रह्मा विष्णु शंकर इन त्रिदेवों का एकत्रित रूप है। यही त्रिदेव परमात्मा की प्रथम रचना है। उनके द्वारा परमात्मा क्रमशः स्थापना विनाश और पालना का कर्तव्य कर्म कराते हैं। देखो अनुज, तीन मुख और एक शरीर, इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई भिन्न भिन्न आत्माएं नहीं है, परंतु एक ही आत्मा है। अर्थात भिन्न भिन्न काल में प्रत्येक देवता की विभिन्न भूमिका है। इसमें ब्रह्मा एवं शंकर का काल एक ही है। पार्थ, जब ब्रह्मा ही पावन बनने अर्थ तपस्या करता है तब उसे तपस्वी मूरत शंकर कहना चाहिए। कलयुग के अंतिम चरण में अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर जब परमात्मा ब्रह्मा के वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं तब ब्रह्मा का दिव्य जन्म होता है। विष्णु अर्थात श्रीनारायण का जन्म तो सतयुग में होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यही त्रिदेव मनुष्य आत्माओं के लिए महान आदर्श है। यदि कोई भी मनुष्य इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मा जैसा ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मा का अनुकरण एवं शंकर जैसी तपस्या करेगा तो भविष्य में वो श्री विष्णु जैसा देवता बन सकता है, जिस विष्णु की आज भी कई मंदिरों में चतुर्भुज मूर्तियां एवं चित्र देखने में आते हैं। पार्थ, अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न अवश्य निर्माण हुआ है कि विष्णु को चार भुजाएं क्यों है।
मधुसूदन, क्या वास्तव में चार भुजाएं किसी को होती है? श्री विष्णु के इस चतुर्भुज रूप में अवश्य ही कोई गुह्य रहस्य है, कृपया आप इस रहस्य को स्पष्ट करें।
पार्थ, वास्तव में चार भुजाएं किसी देवता को होना असंभव है, अर्थात चतुर्भुज विष्णु के मूर्ति में दो भुजाएं श्री नारायण की एवं दो भुजाएं श्री लक्ष्मी की है। चतुर्भुज विष्णु पवित्र प्रवृत्ति का तथा पति पत्नी के एक विचार प्रणाली का प्रतीक है। हे पार्थ, लक्ष्मी नारायण तो समस्त विश्व के लिए आदर्श पति पत्नी का उदाहरण है। उनके आचार विचार एवं पवित्रता की स्थिति एक होने के कारण दोनों की भुजाएं एक ही मुहूर्त में दर्शाई जाती है। यही है चतुर्भुज विष्णु का आध्यात्मिक रहस्य। पार्थ, और किस मुहूर्त का आध्यात्मिक रहस्य तुम जानना चाहते हो?
मधुसूदन, भक्तों ने श्री गणेश का विशेष रूप बनाया है, परंतु अब मैं इस गणेश की वास्तविकता जानना चाहता हूँ।
पार्थ, श्री गणेश का जन्म कैसे होता है इसकी पुराण कथा तो छोटा बालक भी जानता है, परंतु हे कुरुनंदन, श्री गणेश ब्रह्मा का ही दूसरा रूप है ये कौन जानता है? मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि ब्रह्मा का दिव्य जन्म कलयुग के अंतिम चरण में होता है, परंतु शरीर पतित होने के कारण उसका पूजन नहीं होता। इसी के कारण ब्रह्मा का मंदिर होता नहीं, तथापि उसका गायन पूजन करने के लिए बुद्धिमान मानव ने श्री गणेश का मंगल रूप बनाया है। उसका गजमुख ब्रह्मा के ही सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, क्योंकि गज ही सभी प्राणियों में बुद्धिमान प्राणी है। देखो पार्थ, चित्रों में ब्रह्मा के साथ सदा सरस्वती होती है और श्री गणेश के साथ शारदा होती है। ये सभी जानते हैं कि शारदा ही सरस्वती है, तो ये जानना कोई कठिन नहीं कि ब्रह्मा ही श्री गणेश है। गणेश का पूजन अप्रत्यक्ष ब्रह्मा का ही पूजन है। भक्ति मार्ग में यह माना गया है कि श्री गणेश ही शिव का सबसे प्रिय पुत्र है, और परमात्म ज्ञान से यह प्रतीत होता है कि शिव का प्रिय पुत्र गणेश अर्थात ब्रह्मा ही है।
मधुसूदन, आपके इस कथन से मैं समझ गया, वास्तविकता में श्री गणेश तो ब्रह्मा का ही रूप है।
अनुज, अब मनुष्य के बुद्धि में यह आना चाहिए कि जो भी मंदिरों में देहधारी जड़ मूर्तियां बनाई है वे सभी देवी देवता 33 कोटि थे, और भगवान एक ही निराकार शिव है, जो वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा देकर पतितों को पावन बना रहा है। पार्थ, यही ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रकाश है। ये प्रकाश जिसकी बुद्धि में फैल जाएगा वो ज्ञान एवं योग के आधार से अवश्य ही पावन हो जाएगा।
हे गोपाल कृष्ण, आज के मानव को पतित से पावन होने की चिंता अवश्य है। वो नियमित रूप से देवी देवताओं का पूजन करता है, साथ ही साथ बड़ी श्रद्धा से उनका सिमरण भी करता है। इतना ही नहीं, परंतु स्वयं को पावन बनाने अर्थ वो यज्ञ जप तप व्रत और दान करता है। गंगा नदी के प्रति तो उसकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। गंगा में स्नान करने से वो समझता है कि उसकी आत्मा पूर्णतः पावन हो चुकी है। इसके उपरांत जीवन में एक बार क्यों ना हो चारों धाम की यात्रा वो अवश्य करता है। हे वासुदेव, क्या इन विधियों द्वारा आत्मा पुण्यात्मा नहीं बन सकती?
हे भरत श्रेष्ठ, ये तो विवेक तथा चिंतन का विषय है, किसे पुण्यात्मा कहना चाहिए। समाज में पुण्यात्मा की परिभाषा भी भिन्न भिन्न है, परंतु हे पार्थ, पुण्यात्मा वही है जिसमें 5 विकार अंशमात्र भी ना हो, अर्थात जिसने बहुत काल से काम क्रोधादि विकारों का त्याग करके निर्विकारी जीवन व्यतीत किया हो। इस मनुष्य सृष्टि में 5 विकारों के त्याग व्यतिरिक्त अब तक कोई पुण्यात्मा नहीं बना है, ना भविष्य में कोई बन सकता है। पार्थ, पुण्यात्मा बनने के इस गुह्य रहस्य को कोटि कोटि मनुष्य नहीं जानते, फलस्वरूप वे अंत तक पतित ही रहते हैं। अनुज, यदि आत्मा को 100% पुण्यात्मा बनाना है तो केवल विकारों का त्याग ही पर्याप्त नहीं, परंतु उसके साथ आत्मा में जो जन्म जन्मांतर किए हुए पापों का संचय है उसे भी नष्ट करना आवश्यक है। अतः परमात्मा एक ही सरल विधि सुनाते हैं कि हे मेरे प्यारे संतानों, स्वयं को आत्मा अनुभव करते हुए मुझ परम पिता की स्मृति में निरंतर रहना, अर्थात जो आत्मा काम क्रोधादि समस्त विकारों का त्याग करके विधि पूर्वक निरंतर परमात्मा की स्मृति में रहेगी, तो निस्संशय वो भविष्य में 100% पुण्यात्मा बनेगी। यही एकमात्र संपूर्ण पुण्यात्मा बनने की विधि है। इससे अधिक उत्तम विधि कोई भी नहीं है। अतः इस विधि को स्वीकार कर लो पार्थ।
हे मधुसूदन, अभी तक कोटि कोटि भक्तों ने भक्तिभाव के साथ गंगा स्नान किया है, क्या उनका ये कर्म एवं पावन बनने का उद्देश्य निष्फल हो चुका है?
अब विचार करो धनंजय, केवल गंगा स्नान से कोई पावन बन सकता है? यदि ऐसा होता तो गंगा नदी के आसपास रहने वाली सभी मनुष्य आत्माएं पावन होनी चाहिए। पार्थ, सत्य तो यह है कि गंगा भी वर्तमान समय मलिन हो चुकी है, जिसमें यह शरीर भी ठीक रीति निर्मल नहीं हो सकता, तो भला आत्मा निर्मल कैसे हो सकती है? अतः अंतकरण से यही स्वर आना चाहिए कि मनुष्य आत्मा को ना कोई तत्व पावन बना सकता है, ना देवता पावन बना सकता है, और ना ही कोई संत महात्मा। पार्थ, उसे जन जन्मांतर के लिए पावन बनाने वाला एक ही निराकार शिव परमात्मा है। वही जन जन्मांतर के पाप दग्ध करता है। अनुज, यदि तुम्हें पावन बनने के लिए स्नान ही करना है तो अपनी आत्मा पर सदा ज्ञान योग की वर्षा करते रहो, सदा ज्ञान योग की वर्षा करते रहो।
हे ऋषिकेश, अब मैं ये मान्य करता हूं कि गंगा स्नान से कोई भी पावन नहीं बनता, परंतु श्री नारायण का गायन है कि उसका नाम स्मरण करने से पापों के पर्वत भस्म हो जाते हैं, तथा श्री सीताराम का भी गायन है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो ये निश्चित है कि केवल उनके नाम स्मरण से अथवा चिंतन से मनुष्य आत्मा पावन बन सकती है।
अनुज, परमात्मा को यथार्थ रीति न जानने से मनुष्य जिसे परमात्मा चिंतन समझता है, वास्तविक वो है देवताओं का चिंतन। अतः मनुष्य ने केवल आत्मचिंतन अर्थात आत्मा का चिंतन और परमात्मा चिंतन अर्थात निराकार का ही चिंतन करना चाहिए। जब तक शिव भगवान इस धरा पर अवतरित नहीं होते, तब तक मानव देहधारी देवताओं का स्मरण तो करता ही आया है, परंतु सत्य तो यह है कि कोई भी देवता मनुष्य को पावन नहीं बना सकता, क्योंकि प्रत्येक देवता को जन्म मृत्यु के चक्र में सतोगुण रजोगुण एवं तमोगुण इन तीन अवस्थाओं को पार करना ही पड़ता है। चिंतन करो पार्थ, जो सदा पावन नहीं रह सकते, जो काल चक्र में प्रवाह पतित होते हैं, वे पतित पावन कैसे हो सकते हैं? द्वापर युग से जब अनेक देवी देवताओं की भक्ति आरंभ होती है, तब से स्वयं को पावन बनाने अर्थ मनुष्य देव देवताओं का स्मरण करते आया है, परंतु ये कोई भी नहीं जानता कि द्वापर युग में इसी साकार सृष्टि पर सभी देवात्माएं रजोप्रधान अवस्था में आती है, और कलयुग के अंत में तो देवात्माओं को जब तमो प्रधान एवं पतित अवस्था प्राप्त होती है, तब पावन अवस्था पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें भी निराकार परमात्मा से योगयुक्त होना पड़ता है। पार्थ, ये मनुष्य सृष्टि का अटल एवं कटु सत्य स्वयं निराकार परमात्मा ने ही प्रकट किया है।
इसका अर्थ ये हुआ मधुसूदन कि देवताओं को भी जन्म मृत्यु के चक्र में पतित अवस्था प्राप्त होती है। अब प्रश्न यही निर्माण होता है कि क्या निरंतर पावन रहने वाली एक भी आत्मा नहीं है?
पार्थ, तीनों लोकों में एवं तीनों कालों में सदा पावन रहने वाली एक ही आत्मा है, निस्संशय वो है निराकार परमात्मा। इसी के कारण उसे सदाशिव कहा जाता है, सदाशिव अर्थात निरंतर पावन। अब चिंतन करो कि जो देवी देवता केवल सतयुग त्रेता युग में ही पावन होते हैं, और जो कलयुग के अंत में पूर्णतः पतित अवस्था प्राप्त करते हैं, उनका स्मरण करने से मनुष्य आत्मा पावन बनेगी, अथवा जो अनादि अनंत काल से पावन है उसका स्मरण करने से आत्मा पावन बनेगी? अतः इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर निराकार परमात्मा अवतरित होकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुखकमल द्वारा अपना सर्वश्रेष्ठ मत देते हैं कि केवल मेरा स्मरण करने से ही तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, अर्थात संपूर्ण पावन बनने का काल पुरुषोत्तम संगम युग ही है, जबकि इस धरा पर परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। पार्थ, संपूर्ण कल्प में ना इस कृष्ण ने कभी कहा है, ना श्रीराम ने कभी कहा है, और ना ही किसी देवता ने कहा है कि मेरा स्मरण करो तो तुम पावन बन जाओगे, परंतु वर्तमान समय बारंबार स्वयं निराकार परमात्मा कहते हैं कि मेरा स्मरण करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म होकर तुम पावन हो जाओगे। अतः सभी मनुष्य आत्माओं ने एक ही परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। संत महात्माओं ने भी अपना परामर्श दिया है कि एक भगवान का स्मरण करने से तुम पावन हो जाओगे। कहते भी हैं कि सर्व का स्वामी एक ही है। पार्थ, जिसे सर्वधर्म की आत्माएं मान्यता दे सकती हैं, वही सभी का स्वामी केवल निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ही हो सकता है। वही वर्तमान समय मनुष्य आत्माओं के उद्धारार्थ गीता ज्ञान प्रदान कर रहा है।
हे मधुसूदन, मैं स्वीकार करता हूँ कि एक निराकार परमात्मा को ही सभी धर्म की आत्माएं मान्यता दे सकती हैं। मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि पतित पावन केवल निराकार परमात्मा ही है, परंतु वो वर्तमान समय मनुष्य आत्माओं को गीता ज्ञान दे रहा है, ये आपका विधान मुझे पूर्णतः अमान्य है, क्योंकि गीता ज्ञान दाता तो मैं अपने सम्मुख देख रहा हूँ। केशव, आप मुझे क्यों संभ्रमित कर रहे हैं? इस भारत का छोटा बालक भी कहता है कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। अर्थात मनुष्य आत्माओं को गीता ज्ञान देने का अधिकार केवल आपका है केशव, केवल आपका है। हे मधुसूदन, आप तो स्वयं ही अपने अलौकिक अधिकार का परित्याग कर रहे हैं।
अनुज, तुमने अभी अभी ये तो स्वीकार किया है कि पतित पावन निराकार परमात्मा ही है, अर्थात जो पतित पावन है वो मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने अर्थ गीता ज्ञान ही प्रदान करेगा, क्योंकि केवल भगवत गीता का ज्ञान ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। इसलिए हे पार्थ, गीता ज्ञान दाता परमपिता परमात्मा की सभी धर्म की आत्माओं को ये कल्याणकारी आज्ञा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयित्यामि मा शुचः। हे प्रिय वत्स, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी एक ही शरण में आओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, अतः तुम अपने शोक का त्याग कर दो। अब विचार करो पार्थ, यदि परमात्मा केवल अवतरित होगा तथा गीता ज्ञान प्रदान नहीं करेगा तो मनुष्य आत्मा पावन ही नहीं हो सकती। अर्थात जो पतित पावन है वही गीता ज्ञान दाता है। अतः ये सदा ध्यान रहे कि विश्व की समस्त आत्माओं को गीता ज्ञान देने का अधिकार केवल निराकार परमात्मा का ही है। पार्थ, जो गीता ज्ञान प्रदान करता है उसे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना आवश्यक है, अर्थात ये ज्ञान केवल सदा स्मृति स्वरूप परमात्मा के पास ही है। वही प्रत्येक कल्प के अंत में परम धाम से आकर मनुष्य आत्माओं को गीता ज्ञान प्रदान करता है। वही इस विराट रंगमंच पर चलने वाले विराट नाटक को यथार्थ रीति जानता है। वही अजन्मा होने के कारण सदा स्मृति स्वरूप है, अतः वही कल्प कल्पांतर का गीता ज्ञान दाता है। हे धनंजय, अब यह कटु सत्य सुनो कि इस श्री कृष्ण को भी अपने अंतिम जन्म में गीता ज्ञान अर्जन करने वाला अर्जुन बनना ही पड़ता है। इस प्रकार पूर्व जन्म के पुरुषार्थ से ही मेरा कृष्ण के रूप में जन्म हुआ, ये किसी को भी ज्ञात नहीं है। जिसे मनुष्य गीता ज्ञान दाता समझता है वास्तविक वही गीता का प्रथम अर्जुन है। यह सत्य कलियुगी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा मनोआघात है।
ये मनोआघात तो सर्वप्रथम आप मुझ पर कर रहे हैं केशव। आपका एक एक शब्द मेरे हृदय को बाणों के भांति चुभ रहा है। नहीं केशव, नहीं, जो गीता ज्ञान दाता है वो गीता का अर्जुन कदापि नहीं हो सकता। आप तो पूर्णतः विपरीत कथन कर रहे हैं। यदि कोई सूर्य को चंद्रमा तथा सागर को नदी कहेगा तो उसे क्या कहेंगे?
पार्थ, यही तो मैं कहना चाहता हूं। तुम तो चंद्रमा को सूर्य एवं नदी को सागर कह रहे हो, क्योंकि गीता ज्ञान दाता ज्ञान सूर्य परमात्मा ही है। उस ज्ञान सूर्य की ज्ञान किरणें प्राप्त कर मैं ज्ञान चंद्रमा अवश्य बनता हूं, परंतु मैं ज्ञान सूर्य कदापि नहीं हो सकता। ज्ञान सूर्य वही है जो समस्त धर्मों की आत्माओं के लिए ज्ञान के किरण संपूर्ण विश्व में फैलाता है। अर्थात जो ज्ञान सूर्य है वही गीता का भगवान है, वही गीता का भगवान है। जन जन्मांतर इस श्री कृष्ण को गीता ज्ञान दाता समझने के संस्कार अब समाप्त करो। प्रिय धनंजय, सत्य तो यह है कि मूल गीता ज्ञान ना श्री नारायण प्रदान करता है ना श्री कृष्ण, परंतु मूल गीता ज्ञान से तो साधारण नर को श्री नारायण पद एवं साधारण नारी को लक्ष्मी पद प्राप्त होता है। इस प्रकार स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा मनुष्य ने देवता बनना, यही भगवत गीता का श्रेष्ठ लक्ष्य एवं सार है। पार्थ, संपूर्ण विश्व में मनुष्य से देवता बनने का एकमात्र शास्त्र है और वो शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि देवता ही अनेक जन प्राप्त कर कलयुग में साधारण मानव बनते हैं, तब सदा स्मृति स्वरूप परमात्मा उन्हें गीता द्वारा नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा बनाकर पुनः नर से नारायण पद की प्राप्ति करा देता है। हे अर्जुन, मनुष्य सृष्टि के इस नियम के अनुसार मुझे भी मेरे अंतिम जन्म में श्री नारायण पद प्राप्त करने अर्थ परमात्मा से गीता ज्ञान ग्रहण करना ही पड़ता है। भगवत गीता द्वारा ही इस श्री कृष्ण का अलौकिक जन्म होता है, अर्थात मुझे गीता द्वारा ही पुरुषोत्तम बनने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। गीता मेरी माता है भरत श्रेष्ठ, गीता द्वारा ही मेरा ब्रह्मा के रूप में दिव्य जन्म होता है, और जब परमात्मा ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं तब सर्वप्रथम ब्रह्मा अर्थात मेरी ही आत्मा परमात्मा से गीता ज्ञान श्रवण करती है। समझ गए पार्थ, मैं कैसे अपने पूर्व जन्म में गीता ज्ञान अर्जन करने वाला अर्जुन बनता हूं? मनुष्य ये प्रतीत नहीं करता कि भगवत गीता किसने प्रदान की, कब प्रदान की, किसको प्रदान की तथा कहां प्रदान की। गीता के भगवान ने मानव मात्र को कौन सा श्रेष्ठ लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने अर्थ किसने क्या पुरुषार्थ किया, किस एक सत्य धर्म की स्थापना हुई और महाविनाश के उपरांत मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार कैसे खुल गए। इन सभी प्रश्नों के यथार्थ उत्तर जब परमात्मा अवतरित होता है तब ही प्राप्त होते हैं, जबकि वर्तमान समय स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुक्कमल द्वारा गीता ज्ञान सुनाकर समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अतः ये प्रश्न ही निर्माण नहीं होता कि गीता का भगवान कौन है।
परंतु हे केशव, वर्तमान समय कोटि कोटि मनुष्यों की तथा सदियों से जितनी भी पीढ़ियां समाप्त हो चुकी हैं, उन सभी की यही मान्यता है कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण ही है, अर्थात उनके मन में अंशमात्र भी दुविधा नहीं है।
हे भरत श्रेष्ठ, यूं तो सभी कहते हैं कि भगवान ने गीता ज्ञान प्रदान किया, अर्थात केवल गीता में ही भगवान उवाच है, और भगवान कौन है इसका यथार्थ ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है। भगवत गीता के भगवान उवाच यही दो शब्द अप्रत्यक्ष रीति सिद्ध करते हैं कि गीता ज्ञान दाता निराकार शिव ही है। अपने बुद्धि के द्वार खोलो पार्थ, गीता ज्ञान तो समस्त मनुष्य आत्माओं के लिए सद्गति का एवं पावन होने का ज्ञान है। तनिक विवेक युक्त विचार करो, कुरुक्षेत्र नामक युद्ध स्थल पर केवल एक अर्जुन को ही गीता सुनाना संभव है? क्या गीता ज्ञानदाता की वृत्ति इतनी संकुचित थी जो उसने केवल एक ही अर्जुन को गीता ज्ञान प्रदान किया? क्या केवल एक ही मनुष्य आत्मा को सद्गति का तथा उद्धार का अधिकार था? तनिक चिंतन करो पार्थ, परमात्मा थोड़े ही किसी एक आत्मा का पिता है, वो तो विश्व की समस्त आत्माओं का पिता है। भगवत गीता का ज्ञान गुह्य अवश्य है परंतु गुप्त नहीं है। हे कुरुनंदन, जिस प्रकार अपने लौकिक पिता की संपत्ति पर प्रत्येक संतान का पूर्ण अधिकार होता है, उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा को परमपिता परमात्मा द्वारा गीता श्रवण करने का और उससे सुख शांति का वर्षा प्राप्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। कहा भी जाता है प्रत्येक आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अतः वर्तमान समय परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से गीता ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और भारी मात्रा में मनुष्य आत्माएं शिव परमात्मा के सम्मुख गीता ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। जो इस प्रकार गीता ज्ञान अर्जन करते हैं वही भगवत गीता के वास्तविक अर्जुन हैं, वही धर्मग्लानी को समाप्त करके एक सत्य धर्म की स्थापना में परमात्मा के सहयोगी बनते हैं।
हे राधा रमण, कोटि कोटि मनुष्यों को केवल इतना ही ज्ञात है कि महाभारत युद्ध के पूर्व कौरवों के अनैतिक कर्मों के कारण धर्मग्लानी हो चुकी थी। उसी धर्मग्लानी तथा अधर्म को समाप्त करके एक सत्य धर्म की स्थापनार्थ स्वयं आपने ही कुरुक्षेत्र पर गीता ज्ञान प्रदान किया था।
हे महावीर, धर्मग्लानी एवं अनेक धर्म तो कलयुग में होते हैं। सभी धर्मों से एक धर्म की स्थापना करना केवल कलयुग में ही उचित है। मेरा जन्म तो सतयुग में होता है, मैं सतयुग का पहला राजकुमार हूं पार्थ, सतयुग अर्थात सत्य का एवं सत्य धर्म का युग। वहां ना धर्म ग्लानी है ना अनेक धर्म। सतयुग में केवल एक ही धर्म होता है जिसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। पार्थ, इस प्रकार मनुष्य आत्माओं के मन में जो असत्य एवं अयथार्थ मान्यताएं निर्माण हुई है उसे नष्ट कर सत्य परमात्मा सत्य ज्ञान का प्रकाश देकर यही सत्य सुनाते हैं कि सतयुग में इस कृष्ण के साथ न कोई पांडव थे और न ही कोई कौरव। अनुज, मनुष्य ने कौरव पांडवों की कहानी मेरे जीवन के साथ मिला दी है।
नहीं केशव, नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां कौरव पांडव अवश्य होने ही चाहिए। आपका ये विधान असत्य है, पूर्णतः असत्य है।
पार्थ,
मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता।
पार्थ, पार्थ, स्वर ऊंचा करने से असत्य का सत्य में परिवर्तन नहीं होता। यदि तुम्हारा विधान सत्य है तो उसे शांति से प्रस्तुत करो। सत्य सदा ही शांति से प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि सत्य का मूल स्रोत सत्य परमात्मा ही है और वो शांति का सागर है। अतः जो कुछ कहना है शांति से कहो पार्थ।
क्षमा करे ज्येष्ठ भ्राता, मेरे कहने का उद्देश्य तो केवल यही था कि आपके ये विचार शास्त्र सम्मत नहीं है। आपने तो पूर्णतः शास्त्र से भिन्न विचार प्रस्तुत किया है। हे मधुसूदन, कौरव पांडव श्रीकृष्ण तथा महाभारत युद्ध, इन सभी पात्र एवं घटनाओं के प्रति समाज की धारणा खंडित करना अत्यंत कठिन है। आज तक महाभारत पर अनेक ग्रंथ निर्माण हुए हैं। महाभारत को वास्तविक समझकर ही आचार्य पंडित उस पर प्रवचन करते हैं। नहीं जनार्दन, नहीं, कृपया आप महाभारत की सत्यता का खंडन ना कीजिए।
भरत श्रेष्ठ, असत्य तो एक न एक दिन नष्ट होने वाला ही है। सत्य कहना ही मेरा धर्म है, चाहे वो सत्य कटु क्यों ना हो। अतः सत्य तो ये है कि सतयुग में कोई भी दुर्योधन दुशासन तथा कंस जैसी तमो प्रधान दुष्ट एवं कपटी पापात्माएं होती ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो सतो प्रधान मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। फलस्वरूप सतयुग में सभी देव कुलोत्पन्न सतो प्रधान आत्माएं होती है, जिनका आचरण सहज ही गीता के मर्यादा अनुसार होता है। पार्थ, गीता ज्ञान तब प्रदान किया जाता है जब मानव ईश्वरीय मर्यादाओं का तथा भगवत गीता के नीति नियमों का पूर्णतः उल्लंघन करता है। गीता ज्ञान तब प्रदान किया जाता है जब मनुष्य आत्माएं पूर्णतः पतित बनती है। ये निश्चित है कि पतित पावन परमात्मा गीता ज्ञान देकर केवल पतित आत्माओं को ही कहेंगे, मेरा स्मरण करो तो तुम पावन हो जाओगे। ये महावाक्य परमात्मा कदापि पावन देवताओं के लिए नहीं कह सकते। अतः जब सर्व धर्मों को जड़ जड़ीभूत अवस्था प्राप्त होती है, भारत में धर्म ग्लानि का अंधकार छा जाता है, ऐसे विपरीत काल में ही भगवान ने मनुष्य आत्माओं को गीता ज्ञान प्रदान करना आवश्यक एवं यथायोग्य है, और ऐसा काल केवल कलयुग का अंतिम चरण ही है।
हे मधुसूदन, आप तनिक शास्त्रों का भी विचार कीजिए। आज तक गीता संबंधी जो भी ग्रंथ निर्माण हुए हैं उन सभी ग्रंथों का एक मत यही है कि श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कुरुक्षेत्र पर प्रथमतः भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। बड़े बड़े आचार्य पंडित भी अपने प्रवचन में ये विधान सहज ही करते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र पर मूल गीता ज्ञान प्रदान किया था।
पार्थ, भगवान का मत एवं शास्त्रों का मत, इन दोनों में महान अंतर है। शास्त्रों का मत होता है मनुष्य के अपने तर्क वितर्क के आधार पर, तो सत्य परमात्मा का मत होता है संपूर्ण सत्य के आधार पर। इसी के कारण उसे श्रीमत कहा जाता है, अर्थात जब सत्य परमात्मा अपना श्रीमत देकर भगवत गीता प्रदान करता है तब भविष्य में आत्मा एवं युग दोनों भी श्रेष्ठ बनते हैं। यदि द्वापर युग में गीता ज्ञान दिया गया तो द्वापर के उपरांत अत्यंतिक पतन का तमोप्रधान कलियुग कैसे आया। हे भरत श्रेष्ठ, द्वापर युग में मूल गीता ज्ञान दिया गया ये मनुष्य निर्मित सिद्धांत मिथ्या तो है ही, परंतु श्री कृष्ण गीता ज्ञान दाता है ये सिद्धांत उससे भी अधिक मिथ्या है, क्योंकि इस श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में होता है। अतः हे अर्जुन, भगवत गीता का कालखंड कौन सा है तथा गीता का भगवान कौन है, इसका ज्ञान यथार्थ रीति प्राप्त करो। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि इस कलयुग के अंतिम चरण में शिव भगवान मनुष्य आत्माओं के उद्धारार्थ गीता का अमूल्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। फलस्वरूप भविष्य में एक सत्य धर्म की स्थापना होकर भारत में श्रेष्ठाचारी सतयुग निर्माण होता है। हे गुड़ाकेशा, तनिक चिंतन करो, द्वापर युग में तो अनेक धर्मों का निर्माण होना आरंभ होता है। प्रत्येक धर्म अपनी प्राथमिक अवस्था में सतोगुणी होता है। इस प्रकार द्वापर में ना सर्वधर्म स्थापन होते हैं, ना धर्म ग्लानी होती है और ना ही गीता ज्ञान प्रदान करने अर्थ भगवान का अवतरण होता है। पार्थ, 60 वर्षों से भी अधिक काल समाप्त हो चुका है जबकि इस भारत में धर्म ग्लानी होते ही भगवान का अवतरण हुआ था। इस प्रकार इन 60 वर्षों में भगवान का अवतरण बारंबार होता ही रहा है। अतः यह निश्चित है कि भगवान का अवतरण किसी अन्य युग में नहीं परंतु कलयुग के अंतिम चरण में ही होता है जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है।
हे पद्मनाभ, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर निराकार परमात्मा अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं को गीता ज्ञान प्रदान कर रहा है। इस महान सत्य को मैं अंतकरण से स्वीकार करता हूँ परंतु अब समस्या ये है कि इस महान सत्य को समाज के सम्मुख कैसे प्रस्तुत करूं।
हे धनंजय, गीता में कुछ ऐसे श्लोक है जिस पर मनन चिंतन करने से यह अवश्य प्रतीत होता है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं परंतु कोई और है। अतः समाज के सम्मुख ये विशेष श्लोक प्रस्तुत करो।
हे मनोहर, वो विशेष श्लोक तो मैं आपके मुखकमल द्वारा श्रवण करना चाहता हूँ।
नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत्ताः मूढ़ोयम् नाभिजानाति लोको मामज्जम व्ययम्। अर्थात मूढ़ और अज्ञानी लोगों के लिए मैं प्रकट नहीं होता हूँ क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, ये बात वे जान नहीं सकते। और भी इस विषय में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुषिम तनुमाश्रितम परम भावम मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात जब भी मैं मानव सदृश रूप में अवतरित होता हूँ तब मूढ़मति लोग मेरा उपहास करते हैं क्योंकि वे मेरे अनादि अविनाशी एवं दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। पार्थ, इस प्रकार निराकार भगवान को ना जानने से तथा विष्णु को ही भगवान मानने से दशावतार की अयथार्थ मान्यता समाज में दृढ़ हो चुकी है।
हे पद्मनाभ, आपका ये कथन यथार्थ है क्योंकि भगवद गीता में दशावतार के लिए एक अक्षर भी नहीं है। अब मुझे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि श्री विष्णु का कर्तव्य है सतयुग में चक्रवर्ती राजा बनकर प्रजा की पालना करना। उसके लिए मनुष्य गायन भी करते हैं कि विष्णु द्वारा पालना।
पार्थ, विष्णु द्वारा पालना ये अर्ध सत्य मानो समझ गया परंतु कराने वाला कौन है ये अर्ध सत्य काल के प्रवाह में लोप हो गया। उर्वरित अर्ध सत्य यही है कि कराने वाला निराकार भगवान ही है। निराकार भगवान के अवतरण को यथार्थ रीति ना समझने से मत्स्य, कच्छ, वराह इन कनिष्ठ प्राणियों द्वारा भगवान अवतार लेते हैं ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। पार्थ, आध्यात्म ज्ञानी बुद्धिमान एवं विवेकशील व्यक्ति इस बात को कदापि मान्यता नहीं दे सकता। तनिक विचार करो अनुज, ऐसे कनिष्ठ प्राणियों द्वारा भगवान अवतार लेकर आत्माओं का उद्धार कैसे करेंगे, पतितों को पावन कैसे बनाएंगे। पावन होने के लिए आवश्यक है ज्ञान एवं योग की शिक्षा। अतः प्रजापिता ब्रह्मा के वृद्ध तन में प्रवेश करके निराकार परमात्मा गीता ज्ञान और राजयोग की बहुमूल्य शिक्षा देते हैं। निराकार परमात्मा का परकाया प्रवेश ही उसके अवतरण की यथार्थ विधि है। अतः ये सदा ध्यान रहे कि परमात्मा का साकार शरीर ना कृष्ण का है, ना राम का है और ना ही किसी संत महात्मा का है, परंतु उसका साकार शरीर केवल प्रजापिता ब्रह्मा का ही है। परमात्मा साकार बनने के लिए प्रत्येक कल्प में प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में ही प्रवेश करता है जिसे परकाया प्रवेश कहा जाता है।
हे वासुदेव, आपने कई बार इस प्रजापिता ब्रह्मा का नामोच्चारण किया है, अंततः ये प्रजापिता ब्रह्मा है कौन?
पार्थ, अब ये भी रहस्य सुनो कि प्रजापिता ब्रह्मा और कोई नहीं परंतु मेरा ही पूर्व जन्म है। इस जन्म में परमात्मा ब्रह्मा को एक दिव्य एवं आश्चर्यजनक स्मृति प्रदान करते हैं कि तुम ही श्री कृष्ण थे और तुम्हें ही सतयुग में पुनश्च श्री कृष्ण अर्थात श्रीनारायण बनना है। पार्थ, यदि नर से श्रीनारायण बनना है तो उसके लिए आवश्यक है ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग। राजयोग की शिक्षा देकर सभी मनुष्य आत्माओं को स्वयं परमात्मा ने आज्ञा दी है कि देह सहित देह के सभी संबंध और धर्मों का विस्मरण कर मुझ परम पिता परमात्मा का ही स्मरण करो। ये आज्ञा अजन्मा परमात्मा ही दे सकता है। अनुज, ना मैं अजन्मा हूं, ना अव्यक्त हूं, ना अकर्ता हूं और ना ही अभोक्ता हूं। ये समस्त विशेषण निराकार के ही है। पार्थ, गीता में कुछ ऐसे श्लोक हैं जिसे श्रवण करते समय निराकार का वर्णन अनुभव होता है, अर्थात चरित्र है रचयिता शिव का और चित्र है उसकी श्रेष्ठ रचना श्री कृष्ण का। यही मनुष्य आत्माओं का सबसे बड़ा दोष है।
हे राजाधिराज, इसमें मनुष्य आत्माओं का क्या दोष है? उन्हें यथार्थ मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो वे भला क्या कर सकते हैं?
केशव,
परंपरा को चलाना ही मनुष्य अपना कर्तव्य समझता है।
ये तो सद्विवेक की बात है पार्थ। गीता पढ़ने के उपरांत अंतरात्मा से यही स्वर आना चाहिए कि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं परंतु कोई और ही है। नहिते भगवन वक्तिम विदुर देवा न दानवाहा, अर्थात हे भगवन, देवता अथवा दानव आपका व्यक्तित्व नहीं जान सकते। ये महावाक्य ही सिद्ध कर देता है कि गीता के भगवान को कोई नहीं जानता पार्थ, कोई नहीं जानता। इस कृष्ण को तो समस्त विश्व और भारत का छोटा बालक भी जानता है। हे अर्जुन, ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता के भगवान का युग है, अतः विश्व की समस्त आत्माओं को ये महान संदेश दो कि गीता ज्ञान दाता शिव तुम्हें गीता का अमृत देने आया है, जिस अमृत का प्राशन करने से तुम्हें दैवी स्वराज्य का अधिकार प्राप्त होगा। तुम 21 जन्मों के लिए अमर बनोगे, अर्थात तुम्हें प्रत्येक जन्म में पूर्ण आयु प्राप्त होगी। पार्थ, जो इस प्रकार दैवी स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करा देता है, जो मनुष्य आत्माओं को अमर भव का वरदान देकर अमरत्व प्रदान करता है, ऐसा अमरनाथ परमात्मा ही गीता ज्ञान दाता तथा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। धनंजय, इसमें अंशमात्र भी संदेह ना हो।
हे मधुसूदन, आपने तात्विक विवेकयुक्त एवं संशोधनात्मक ऐसे कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जिनसे निराकार परमात्मा ही गीता ज्ञान दाता है ये सिद्ध होता है, परंतु हे जनार्दन, इस सिद्धांत को जगत मान्यता कैसे प्राप्त होगी?
हे गुरुनंदन, समस्त विश्व में ईश्वरीय सेवा अर्थ परिक्रमा लगाओ और सभी आत्माओं के सम्मुख भगवत गीता का रचयिता एवं उसकी श्रेष्ठ रचना, इसकी भिन्नता स्पष्ट करो तो गीता ज्ञान दाता निराकार परमात्मा है इस महान सिद्धांत को जगत मान्यता प्राप्त होगी।
हे पद्मनाभ, कृपया आप उस भिन्नता को स्पष्ट करें, मैं अवश्य ही उस भिन्नता को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा।
तो ध्यान से सुनो अर्जुन, सर्वप्रथम महत्वपूर्ण भिन्नता तो यह है कि परमात्मा कभी भी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता और मैं माता के गर्भ से जन्म लेता हूं। परमात्मा को अपना कर्मजन्य शरीर ना होने के कारण वो ब्रह्मा तन में प्रवेश करके गीता ज्ञान सुनाते हैं, परंतु मुझे अपना शरीर होने के कारण ना मैं परकाया प्रवेश करता हूं ना ही गीता ज्ञान सुनाता हूं। ज्ञान सागर परमात्मा गुरुओं का भी सदगुरु होने के कारण उसे किसी से भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस श्री कृष्ण को अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। भरत श्रेष्ठ, जो अन्य किसी से ज्ञान प्राप्त करे वो गीता ज्ञान दाता हो सकता है? जगत का पालनहार परमात्मा किसी से भी पालना नहीं लेता, परंतु शिशु एवं बाल अवस्था में मेरे लौकिक माता पिता मेरी पालना करते हैं। परमात्मा सतयुगी स्वर्ग निर्माण करता है और मैं उस स्वर्ग का प्रथम राजकुमार हूं। परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है तो मैं उस वृक्ष का प्रथम पर्ण हूं। इसी के कारण चित्रों में बाल कृष्ण पीपल के पर्ण पर दिखाया जाता है। पार्थ, परमात्मा तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। विष्णु अर्थात ये श्री कृष्ण परमात्मा की प्रथम रचना है। परमात्मा अव्यक्त है तो मैं अपने शरीर द्वारा व्यक्त होता हूँ। परमात्मा अभोक्ता है तो मैं राज्य भोगने वाला भोगता हूँ। परमात्मा अकर्ता है तो मैं कर्म करने वाला करता हूँ। परमात्मा अल्पकाल ही साकार लोक में आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं तथा बहुतांश काल वो परम धाम में रहते हैं। मैं अल्पकाल परम धाम में रहकर मेरा बहुतांश काल 84 जन्मों के साथ इस साकार सृष्टि पर व्यतीत होता है। परमात्मा धर्मातीत होने के कारण किसी भी दैहिक धर्म में जन्म नहीं लेता, परंतु मेरा जन्म आदि सनातन देवी देवता धर्म में होता है। इस प्रकार परमात्मा और श्रीकृष्ण में जो भिन्नता है वो सभी के सम्मुख ज्ञान युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त होकर प्रस्तुत करो।
हे वासुदेव, मैं समझ गया कि इस भिन्नता को प्रस्तुत करना अर्थात भगवद गीता का रचयिता एवं भगवद गीता द्वारा निर्माण होने वाली उसकी श्रेष्ठ रचना का ज्ञान प्रस्तुत करना। परंतु ऋषिकेश, मेरा अनुभव तो ये है कि मनुष्यों को कितना भी सत्य सुनाओ परंतु वे असत्य को ही सत्य मानते हैं।
हे महावीर, इस कलयुग में असत्य का प्रभाव अधिक निर्माण हुआ है, अर्थात कलयुग है ही अधिकांश असत्य निर्माण होने का युग। असत्य को नष्ट कर संपूर्ण सत्य प्रकट करने वाला एक ही सत्य परमात्मा है। पार्थ, परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल द्वारा उच्चारे हुए महावाक्यों की गीता जो विधि पूर्वक श्रवण करेगा, उसकी अंतरात्मा से यही स्वर प्रकट होगा कि सभी सत्यों में सत्य महान शिव है, गीता का भगवान। पार्थ, ये महान सत्य सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने का अंतिम उद्देश्य यही है कि गीता ज्ञानदाता कोई भी देहधारी पुरुष नहीं है, परंतु गीता ज्ञानदाता विदेही निराकार शिव है, अर्थात गीता का भगवान अपौरुषेय है। पार्थ, निस्संदेह अपौरुषेय है। केवल इसी गीता को जीवन में धारण करने से भविष्य में साधारण नर श्री नारायण पद प्राप्त करता है, तो साधारण नारी श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करती है। ऐसा पद प्राप्त करना यही मानव मात्र का श्रेष्ठ लक्ष्य है, यही भाग्य की परिसीमा है। पार्थ, यही भाग्य की परिसीमा है। ये महान भाग्य केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर ही प्राप्त होता है।
हे पद्मनाभ, आपके विचार एवं सिद्धांत मैं विनम्र होकर स्वीकार करता हूं। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा कि गीता ज्ञानदाता केवल निराकार शिव ही है, जो सभी आत्माओं का पिता है, जो मनुष्य को देवता बनाने वाला है, जो सभी का उद्धार करता एवं भाग्य विधाता है।
प्रिय अर्जुन, अब भी भगवद गीता के विषय में तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न शेष है तो अवश्य पूछना। मनुष्य आत्माओं के प्रश्न और परमात्मा के उत्तर, इसी के आधार पर तो 18 अध्याय की गीता निर्माण हुई है। पार्थ, प्रत्येक प्रश्न ही ज्ञान का प्रारंभ है और उसका उत्तर ज्ञान की पूर्णता एवं समाधान है।
हे मधुसूदन, अब मेरे इस प्रश्न का आप समाधान कीजिए। द्वापर युग में जो भगवद गीता लिखी गई है उसमें अनेक संभ्रम निर्माण होते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि प्रत्येक धर्म अहिंसा के महान तत्व को मान्यता देता है, परंतु हे श्रीधर, गीता में जो हिंसक युद्ध के लिए प्रेरणा दी गई है, क्या वो यथार्थ है? यदि प्रत्येक धर्म अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा देता है, तो इस प्रकार धर्मशास्त्र में ही हिंसक युद्ध प्रस्तुत करने का क्या प्रयोजन है?
हे वीर धनंजय, निस्संशय भगवद गीता युद्ध के लिए प्रेरित करती है, परंतु अहिंसक एवं कल्याणकारी युद्ध के लिए।
युद्ध और उसमें हिंसा ना हो यह असंभव है। आपका ये रहस्ययुक्त भाष्य मेरी बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। हे केशव, कृपया इस अहिंसक युद्ध का अर्थ स्पष्ट करें।
मैं ये पूर्णतः मान्य करता हूं कि गीता में स्थूल युद्ध का प्रयोजन है, परंतु हे महावीर, जिसे धर्म का एवं अहिंसा परमो धर्म का यथार्थ ज्ञान है, ऐसा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति गीता में वर्णित स्थूल युद्ध को मान्यता नहीं दे सकता। हे वीर धनंजय, ये युद्ध सूक्ष्म एवं प्रतीकात्मक रूप में है, अर्थात ये युद्ध माया के साथ है। पार्थ, माया ही मनुष्य आत्माओं को पतित बना देती है। माया के कारण ही अनेक समस्याएं समाज में निर्माण होती है। माया ही मनुष्य को दुखी, अशांत एवं निर्बल बना देती है। माया के कारण ही मानव को तन और मन को कष्ट देने वाले कर्मभोग भोगने पड़ते हैं, अर्थात माया ही समस्त मनुष्य आत्माओं का सबसे बड़ा शत्रु है। हे महावीर, माया का वास्तविक अर्थ है मनुष्य आत्मा में निर्माण होने वाले 5 मनोविकार, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार। उसी को दूसरे शब्दों में रावण भी कहा जाता है। जैसे परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वैसे ये रावण भी बड़ा प्रबल है। सतयुग त्रेतायुग ईश्वर निर्मित राज्य माना जाता है, उसी प्रकार द्वापर कलयुग में इस महाभयंकर रावण का राज होता है। मैं जानता हूं कि रावण कहने से रामायण प्रसिद्ध लंकावासी दशमुखी रावण तुम्हारे नैनों के सम्मुख अवश्य आया होगा, परंतु सत्य तो यह है कि ऐसा कोई जड़ देहधारी रावण तो था ही नहीं। पार्थ, 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के, ऐसे दशमुखी रावण का साम्राज्य वर्तमान समय संपूर्ण विश्व पर है। जब तक नर नारी अपने मन में छिपे इस सूक्ष्म माया रावण का आधिपत्य नष्ट नहीं करते, तब तक ना रामराज्य निर्माण हो सकता है और ना ही आत्मा पावन बन सकती है। हे कुरुनंदन, ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत आत्मा में यह प्रकाश आता है कि इन विकारों से ही आत्मा पतित, तमोप्रधान एवं दुखी बनती है। फिर मन में विकारों के साथ जो सूक्ष्म युद्ध चलता है, उसका ही जड़ अथवा प्रतीकात्मक रूपांतर भगवत गीता में किया है। पार्थ, वास्तविक भगवत गीता कोई मनुष्य को हिंसक युद्ध के प्रति प्रेरणा देने का शास्त्र नहीं है, परंतु वो मानव मात्र के लिए सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक शास्त्र है। अर्थात ये शास्त्र 5 मनोविकारों के विरुद्ध युद्ध करने की प्रेरणा देता है। तुम्हें भी इन मनोविकारों के विरुद्ध सूक्ष्म युद्ध करना है। हे महावीर, जिस प्रकार स्थूल युद्ध के प्रति रथ, रथी और सारथी होते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म युद्ध के प्रति भी इन तीनों की आवश्यकता है।
नहीं केशव, नहीं। यदि युद्ध में रथ, रथी और सारथी है तो उसे सूक्ष्म युद्ध कौन कहेगा? उसे तो हिंसक युद्ध ही कहना चाहिए।
पार्थ, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि ये शरीर ही आत्मा का रथ है, उसमें विराजमान आत्मा रथी है। मन के अनेक संकल्प विकल्प इस रथ के अश्व है। ये अश्व देहधारी अश्वों से अधिक गतिमान है, क्योंकि मन के अंतर्गत निर्माण होने वाला प्रत्येक संकल्प आत्मा को कहां से कहां तक ले जाता है। परंतु ज्ञानी वही है जो बुद्धि रूपी लगाम से संकल्प रूपी अश्वों को अपने वश में रख नियंत्रित करता है। हे वीर धनंजय, तुम्हारा ये मस्तक ही कुरुक्षेत्र है। जिस कुरुक्षेत्र पर संकल्प विकल्पों के कौरव पांडव निर्माण होते हैं, विकार युक्त अनेक अशुद्ध संकल्प तुम्हारे जन्म जन्मांतर के शत्रु हैं। यदि तुम्हारे मन में काम क्रोध के संकल्प निर्माण होते हैं तो समझना दुर्योधन की निर्मिति हुई है। यदि तुम्हारे मन में लोभ मोह के संकल्प निर्माण होते हैं तो समझना धृतराष्ट्र की निर्मिति हुई है। यदि तुम्हारे मन में कामवश किसी स्त्री का वस्त्रहरण करने का संकल्प आया तो समझना दुशासन की निर्मिति हुई है। और यदि मन में दुख, अशांति एवं पीड़ा के अनेक संकल्प निर्माण होते हैं तो समझना 100 कौरवों की सेना ही निर्माण हुई है। पार्थ, यही कौरव सेना शुद्ध संकल्पों को नष्ट कर मानवी मन में अपना साम्राज्य स्थापन करती है। परंतु गीता ज्ञान अर्जन करने के उपरांत आत्मा महारथी योद्धा बनकर अस्त्र शस्त्र सहित युद्ध करने के लिए सावधान होती है। तत्पश्चात स्वयं भगवान उन विकार युक्त अशुद्ध संकल्पों का अर्थात कौरवों का संहार करने की आज्ञा देता है। पार्थ, गीता का ज्ञान अर्जन कर परमात्मा की समर्थ स्मृति आने से ज्ञान और योग का धनुष एवं शुद्ध संकल्पों के बाण योद्धा के बुद्धि रूपी तरकश में निर्माण होते हैं। उसी धनुष बाणों से दुख देने वाली विकारी तथा अशुद्ध संकल्प रूपी कौरव सेना का वो निर्दालन करता है। अनुज, ऐसे समय योद्धा अपना बुद्धि रूपी लगाम परमात्मा के हाथों सौंप देता है। अर्थात इस युद्ध में आत्मिक योद्धा की विजय निश्चित होती है। जहां स्वयं परमात्मा है वहां पराजय असंभव है। इस प्रकार परमात्मा को ही अपना साथी एवं सारथी बनाकर 5 विकारों को नष्ट करना, यही धर्मयुद्ध है। पार्थ, यही धर्मयुद्ध है। यही श्रीमद् अनुसार किया हुआ श्रीमद् भगवत गीता का अहिंसक युद्ध है। यही मानव मात्र के लिए सबसे कल्याणकारी युद्ध है। अनुज,
हे मधुसूदन, मैं समझ गया कि अहिंसक युद्ध क्या होता है, धर्मयुद्ध क्या होता है तथा भगवत गीता का वास्तविक युद्ध कौन सा है। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा।
हे महाबाहो, देह अभिमान ही 5 विकारों की जड़ है। वही सभी विकारों का गुप्त सेनापति है। उसे ही नष्ट करोगे तो 5 विकार स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि गीता में वर्णित काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार, ये 5 विकार ही देह के धर्म अर्थात परधर्म है। और सिद्धांत यही है कि परधर्म आत्मा के लिए कदापि सुखदायी नहीं होता। अतः हे पार्थ, आत्मा अभिमानी होकर स्वधर्म में सदा स्थित रहना तुम्हारा परम कर्तव्य है। क्योंकि स्वधर्म ही वास्तविक धर्म है। अर्थात परधर्म अधर्म है। पार्थ, परधर्म अधर्म है।
हे पद्मनाभ, आपने 5 विकारों को देह के धर्म अर्थात परधर्म कहा है, परंतु स्वधर्म कौन सा है ये मैं जानना चाहता हूं।
पार्थ, आत्मा का धर्म ही स्वधर्म है, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता एवं ज्ञान। इन आत्मा के अनादि गुणों में स्थित रहना ही स्वधर्म में स्थित रहना है। जब आत्मा स्वधर्म में स्थित होती है तब उसे सुख ही सुख प्राप्त होता है, और जब वही आत्मा परधर्मवश होती है तो उसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणाः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम् श्रेयाः परधर्मो भयावहाः। अर्थात परधर्म का आचरण सहज होता है, परंतु उससे भी कठिन स्वधर्म अधिक श्रेयस्कर है। स्वधर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है, परंतु परधर्म भयंकर है। पार्थ, जब दोनों धर्मों का ज्ञान साधक को प्राप्त होता है तो स्वधर्म एवं परधर्म का मस्तक के कुरुक्षेत्र पर घमासान युद्ध आरंभ होता है। कभी विकार आत्मा पर विजय प्राप्त करते हैं तो कभी आत्मा विकारों पर विजय प्राप्त करती है।
हे वासुदेव, इस युद्ध में कभी जय तो कभी पराजय ऐसा क्यों होता है? मैं तो सदा विजयी बनना चाहता हूं।
हे धनंजय, यदि अधर्म पर इस माया पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए महारथी अवश्य बनना है। हे पार्थ, जो महारथी होता है वो एक ही बार माया पर विजय प्राप्त कर निश्चिंत होता है। पार्थ, मैं तुम्हें ऐसा महारथी देखना चाहता हूं, क्योंकि केवल महारथी ही सदा काल के लिए मायाजीत होता है। मैं जानता हूं कि अब तुम्हारा किसी मनुष्य के साथ शत्रुत्व अथवा वैर हो ही नहीं सकता। तुम तो पूर्णतः निर्वैर बन चुके हो, तथापि तुम्हें युद्ध अवश्य करना है, और इस युद्ध में तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी केवल माया रावण ही है। अतः हे पार्थ, उठाओ अपना ज्ञान योग का धनुष और उस शत्रु का संहार करो जिसने तुम्हारी पवित्रता का मुकुट उड़ाकर तुम्हें दैवी सिंहासन से नीचे गिराया। उस शत्रु का संहार करो जिसने तुम्हारा जन्म जन्मांतर आत्मिक पतन करके तुम्हें तमोप्रधान बनाया है। उस शत्रु का संहार करो जिसने तुम्हारी सुख शांति, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य आधा कल के लिए नष्ट किया। पार्थ, उस शत्रु का संहार करो जिसने तुम्हें स्वर्ग से निकाल नर्क में ढकेल दिया है। ऐसे आत्मघाती महाशत्रु के साथ युद्ध करके उसे सदा के लिए पराजित करो, उसे सदा के लिए नष्ट करो, उसे योग अग्नि से जलाकर उसका अंतिम संस्कार करो। पार्थ, यही भगवत गीता का ज्ञान अर्जन करने वाले प्रत्येक अर्जुन का परम कर्तव्य है। पार्थ, ये शंख ध्वनि स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम्हारे लिए की है। ये युद्ध आरंभ की शंख ध्वनि है। युद्ध आरंभ करो महारथी।
हे वासुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इस माया रावण को पराजित करना मेरा कर्तव्य है। मैं महारथी बनकर ही इस रावण को सदा के लिए नष्ट करूंगा।
हे महाबाहु, यदि तुम्हें इस रावण पर विजय प्राप्त करनी है तो तुम स्वयं श्रीराम बनो। जिस प्रकार कथोकल्पित रावण के प्रति कहा जाता है कि उसके प्राण नाभि में थे, ठीक उसी प्रकार इस विकार रूपी रावण के प्राण देह अभिमान में है। अतः देह अभिमान को ही अपना लक्ष्य बनाओ महावीर, उस पर ही अपने बाणों की वर्षा करो। इस प्रकार जो श्रीराम बनकर दशानन को हराता है वही वास्तविक एवं अलौकिक दशहरा मना सकता है। पार्थ, जो अलौकिक दशहरा मनाता है उसकी आत्मज्योत स्वयं परमात्मा ज्ञान घृत से प्रज्वलित करता है। अर्थात जिसकी आत्मज्योत परमात्मा द्वारा प्रज्वलित होती है वही अलौकिक दीपावली यथार्थ मना सकता है। यदि तुम्हें अलौकिक दीपावली मनानी है तो प्रथमतः इस दशानन पर, इस रावण पर विजय प्राप्त कर विजयादशमी मनाओ। पार्थ, विजयादशमी मनाओ।
विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी ये लंका जलने वाली।
कल्प की है अंत घड़ी ये लंका जलने वाली।
आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ।
विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।
और लोभ मोह रावण के संगे साथी।
काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी।
इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। हो स्वतंत्र अब जग सारा ऐसा तप कमाओ।
विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।
रावण को तुम भस्म करो अब राम से प्रीत जुटाओ।
विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।
भरत श्रेष्ठ, ज्योति स्वरूप परमात्मा केवल एक आत्म ज्योति को नहीं परंतु अनेक आत्म ज्योति को प्रज्वलित करता है। उसी के स्मृति अर्थ दीपावली में केवल एक दीपक नहीं परंतु दीपमालाएं ही प्रज्वलित की जाती है।
आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए, घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए।
हे गुरुनंदन, दीपावली एवं दशहरे के इस महान रहस्य को प्रतीत करने के पश्चात तुम्हारा कर्तव्य है कि इस रावण को अर्थात विकारों को नष्ट करके अपना जीवन पवित्र एवं शांतियुक्त बनाना, क्योंकि इस रावण का षड्यंत्र है आत्मा को अपवित्र, पतित, दुखी एवं अशांत बनाना। रावण के इस षड्यंत्र को निष्फल बनाओ पार्थ, पूर्णतः निष्फल बनाओ।
ऋषिकेश, मैं अवश्य रावण के इस षड्यंत्र को निष्फल बनाऊंगा, क्योंकि अब मुझे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं चाहिए।
अनुज, स्थाई एवं शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय है जीवन में मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति एवं संबंध में पवित्रता धारण करना, क्योंकि पवित्रता ही शाश्वत सुख शांति की जननी है। यदि देवताओं जैसा स्वर्ग सुख एवं सुख शांति प्राप्त करना चाहते हो तो देवताओं जैसे पवित्र बनो पार्थ। पवित्रता के व्यतिरिक्त मानव कभी भी संपूर्ण सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। पवित्रता ही परमात्म ज्ञान का आधार है। ये पांच विकार ही साधक को योगयुक्त तथा पवित्र बनाने से वंचित करते हैं। अतः परमात्मा का भगवद गीता सुनाने का उद्देश्य यही है कि मनुष्य आत्मा में निर्माण होने वाले जन जन्मांतर के विकारों को नष्ट करना, तत्पश्चात उसे संपूर्ण पवित्र तथा योग युक्त बनाकर विकार रहित श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रवृत्त करना, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म के आधार से ही श्रेष्ठ भाग्य निर्माण होता है, अर्थात भविष्य में मनुष्य आत्मा सुख शांति की चरम सीमा तक पहुंचती है। भरत श्रेष्ठ, इसी महान कार्य के लिए एवं मनुष्य सृष्टि के कल्याणार्थ परमात्मा कोटि कोटि योजन दूर अपने परम धाम से इस साकार सृष्टि पर आता है। अब भाग्य विधाता परमात्मा आया है तो प्रत्येक आत्मा अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य निर्माण करें। परंतु भाग्य निर्माण करने में मुख्य व्यत्यय है पांच विकारों का, अर्थात उसका त्याग ही श्रेष्ठ सुखदायी एवं पवित्र भाग्य का आरंभ है। यदि श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करना है तो आत्मा के पतन को अवश्य ही प्रतिबंध करना होगा। पार्थ, ये सदा ध्यान रहे कि आत्मा का पतन ही भाग्य का पतन है, और जब आत्मा का उद्धार होता है तो भाग्य भी उद्धारित निर्माण होता है। अतः पांच विकारों के कारण आत्मा का किस प्रकार पतन होता है तथा उन पांच विकारों पर सदा के लिए कैसी विजय प्राप्त करनी है, इसका आगामी स्वाध्याय कल आरंभ होगा। कल इसी स्थान पर अवश्य आना।
ऋषिकेश, ये प्रकृति से श्रृंगारित मनभावन स्थान तो मेरा श्रेष्ठ भाग्य निर्माण होने का स्थान है। कल मैं अवश्य आऊंगा, आप चिंता मुक्त रहे। अब मुझे प्रस्थान के लिए अनुमति दीजिए। आपको मेरा त्रिवार प्रणाम।
शांति। वर्तमान समय अनेक मंदिर तथा अनेक मूर्तियां देखकर मनुष्य ये निर्णय नहीं कर सकता कि भगवान है कौन। यदि मनुष्य को भगवान का यथार्थ परिचय प्राप्त होता तो वो अनेकों के लिए भगवान, प्रभु, ईश्वर इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं करता। आपने ये भी महत्वपूर्ण ज्ञान ग्रहण किया है कि पतित पावन ना गंगा है, न कोई देवता है और ना ही कोई महात्मा है, परंतु पतित पावन केवल विदेही परमात्मा ही है। वही वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा राजयोग की अमूल्य शिक्षा देकर मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन कर रहा है, अर्थात जो पतित पावन है वही गीता का भगवान है। इस विषय में देवता श्री कृष्ण तथा निराकार परमात्मा इनमें जो महान अंतर है वो भी आपके सम्मुख स्पष्ट किया है। अंत में भगवद गीता का सूक्ष्म एवं अहिंसक युद्ध कैसे करना है, इसका ज्ञान आपने यथार्थ रीति अर्जन किया ही होगा, ये मेरा आपके प्रति विश्वास है। ओम शांति।